ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस फाउंडेशन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर की गई थी। इसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की साइबर अपराध से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना है। नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेनदेन और डिजिटल आंकड़े का इस्तेमाल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। श्री शाह ने कहा कि हाल ही में प्रभावी 3 आपराधिक कानून देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान रखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी से वृद्धि हो रही है और 2030 तक इसकी वार्षिक बिक्री 1 करोड़ हो जाएगी। इससे 5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। श्री गडकरी ने कहा कि 400 स्टार्टअप ने दोपहिया वाहनों का विनिर्माण शुरू किया है। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि सस्टेनेबिलिटी अब विकल्प नहीं बल्कि धरती के कल्याण के लिए एक आवश्यक है। हरित इस्पात रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस्पात जैसे क्षेत्र का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसलिए सस्टेनेबिलिटी के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। श्री कुमार स्वामी ने हरित इस्पात सस्टेनेबिलिटी मार्ग रिपोर्ट भी जारी की। ये रिपोर्ट इस्पात उद्योगों को कार्बन रहित बनाने पर केंद्रित है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 135 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। नामांकन पत्र बृहस्पतिवार तक भरे जा सकते हैं। इस बीच भाजपा ने आज 21 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। योगेश बैरागी जुलाना से, कृष्णा गहलावत राय सीट से, बिमला चौधरी पटौदी से, नसीम अहमद फिरोजपुर झिरका से और एराज खान पुनहाना से उम्मीदवार हैं। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 26 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र वापस लेने का कल अंतिम दिन था। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहब दानवे ने बताया कि समिति में 3 सह आयोजक, विभिन्न समितियों के प्रमुख, विशेष आमंत्रित सदस्य और पदेन सदस्य शामिल हैं। समिति में नितिन गडकरी, चंद्रशेखर बावनकुले, देवेंद्र फडणवीस, पीयूष गोयल, विनोद तावड़े, आशीष शेलार और नारायण राणे विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। नौसेना सिविलियन प्रवेश परीक्षा अप्रत्याशित तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा आज शुरू होने वाली थी। नौसेना ने कहा है कि विभिन्न ग्रुप बी, NG और ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जानी थी। परीक्षा की तारीख फिर से निर्धारित की जाएगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज नकद पुरस्कारों की घोषणा की। दिल्ली में पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में खेल मंत्री ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रूपये दिए जायेंगे। मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख रूपये मिलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।